मेरे जिगरी दोस्तों नमस्कार। आज 18 नवंबर 2020 है और आज के इस AFEIS के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों फिलहाल हम लोग पुस्तक के संदर्भ में रचनात्मकता की बात कर रहे हैं और कल मैंने आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश की थी कि किस तरीके से जो रचनात्मकता का जीवन होता है वही बहुत से लोग इनफैक्ट आध्यात्मिकता का जीवन मानकर चलते हैं और साथ ही साथ पुस्तकें हमें इसी रचनात्मकता की ओर ले जाती हैं। और फिर मैंने बताया था कि किस प्रकार से अब लगातार हमारी रचनात्मक क्षमता को चुनौतियां मिल रही हैं, ढेर सारे चैलेंजेस से हम जूझ रहे हैं। लेकिन इसका दुर्भाग्यजनक पक्ष यह है कि हम इन चैलेंजेस को समझ नहीं पा रहे हैं। हमें ऐसा लग रहा है कि ये जो चैलेंजेस है, जो चुनौतियां हैं, ये हमारे लिए बहुत अधिक सुविधाजनक हैं, हमारे जीवन के लिए वरदान बनकर आई हैं। उदाहरण के तौर पर आपके हाथ में स्मार्टफोन है। कभी सच में आपने इस स्मार्टफोन की जो कारस्तानी है, मैं कारस्तानी की बात कर रहा हूं, काम की बात नहीं कर रहा हूं, डेफिनेटली किसी के हाथ में अगर स्मार्टफोन है तो उसके हाथ में दुनिया की बहुत बड़ी ताकत है, दुनिया का बहुत बड़ा साधन है, बहुत बड़े उपकरण से वो लैस है। लेकिन केवल यही नहीं है, जैसे एक परमाणु बम है या परमाणु ऊर्जा है, परमाणु से आप ऊर्जा बना लीजिए और परमाणु से आप ऊर्जा बना करके दुनिया का विनाश कर लीजिए, या आपके हाथ में है। महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि आपके हाथ में तलवार है, महत्वपूर्ण बात यह है कि जो आपके हाथ में तलवार है उसका आप उपयोग किस तरीके से कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं। हर बात पर यही लागू होती है, हर उपकरण पर यही लागू होती है, हर घटना पर यही बात लागू होती है। और ठीक इसी तरह से आपके हाथ में जो स्मार्टफोन है, जिसे आप यूं कह लीजिए कि जो मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन आज हो गया है, उसके ऊपर भी लागू हो रही है। सोच करके देखिए कि स्मार्टफोन क्या कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर मैं आपसे अपना एक बहुत ही छोटा सा अनुभव शेयर करना चाहूंगा। सोने से पहले, रात में सोने से पहले दो एक्टिविटीज सामान्यतया अधिकांश लोग करते हैं, जिनमें एक मैं भी हूं। या तो हम टीवी चैनल्स देखते देखते टीवी ऑफ करते हैं और सो जाते हैं, या फिर ऐसा होता है कि कोई किताब पढ़ते 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 धीरे धीरे नींद आ जाती है और हम सो जाते हैं। ज्यादातर ये दो स्थितियां आपको देखने को मिलेंगी। मैंने बहुत ही सूक्ष्मता के साथ ऑब्जर्व किया है कि जिस दिन मैं टीवी चैनल्स को देखते देखते सो जाता हूं, उस दिन की जो मेरी रात होती है वो अपेक्षाकृत थोड़ी सी खौफनाक रात होती है। खौफनाक रात इस मायने में स्वप्न को लेकर, उस दिन जो स्वप्न आते हैं वो कभी बहुत बेहतर स्वप्न नहीं आते। भले ही टीवी चैनल्स पर जो मैंने देखा है वो ठीक ठाक चीजें थी, अच्छे खासे प्रोग्राम थे, लेकिन जो सपने आते हैं वो बेहतर नहीं होते। मैंने सोचा कि ऐसा क्यों होता है। मैंने अपनी ओर से निष्कर्ष निकाला कि जो मैं सपने देखता हूं उस समय टीवी चैनल्स को देखकर सोने के बाद, वो इनफैक्ट सच यह है कि वो मेरे अपने सपने नहीं होते, वो सपने होते हैं जो टीवी चैनल्स ने मेरे दिमाग में इंजेक्ट कर दिए हैं, डाल दिए हैं। और चूंकि मेरे पास अपने भी सपने हैं, अपना दृश्य जगत है, तो टीवी का जो दृश्य जगत है जो मेरे अंदर डाल दिया गया है, और मेरे अंदर पहले से ही मौजूद जो दृश्य जगत है जो मेरे अवचेतन मन में है, उनमें कहीं ना कहीं पहुंच करके एक ऐसी जगह आती है जहां टकराव होने लगते हैं, द्वंद्व होने लगता है। लेकिन जो टीवी चैनल्स के जो दृश्य हैं वो चूंकि बिल्कुल ताजे हैं, उनका बहुत गहरा प्रभाव है, तो स्वाभाविक रूप से उनकी जीत हो जाती है और फिर वो मेरे मानस पटल पर उभर कर एक विचित्र किस्म की दुनिया की रचना कर देते हैं, और वो दुनिया ऐसी होती है जिससे मेरा कोई परिचय नहीं होता। ये तो उसी तरीके से है टीवी चैनल्स में जाकर के जब आप किसी को देखते हैं, कोई कहानी सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, तो जैसे आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं, यात्री आते रहे, मिलते रहे, उठते रहे, बैठते रहे, आपसे बातचीत होती रही, और अगर वो साल भर बाद आपसे फिर कहीं मिले तो आप उन्हें पहचान नहीं पाएंगे। तो टीवी चैनल्स के दृश्यों का तो यही हाल होता है। दूसरी स्थिति मैंने देखी, जब मैं कोई पुस्तक पढ़ते पढ़ते सोता हूं, चाहे मैं मैगजीन पढ़ रहा हूं, किताब पढ़ रहा हूं, कोई भी पुस्तक पढ़ रहा हूं, उस दिन की जो नींद होती है वो बहुत सॉफ्ट स्लिप होती है। उस दिन नींद से उठने के बाद ऐसा लगता है जैसे कि शरीर और दिमाग रूई की तरह हल्का हो गया हो। सपने आते हैं, ऐसा नहीं कि वह रात स्वप्न रहित रात होती है, नॉट एट ऑल। उस दिन भी सपने आते हैं, लेकिन वो सपने मेरे अपने होते हैं, मेरे परिचित होते हैं, उन सपनों से मेरी दोस्ती होती है। वो जब आते हैं तो मैं उन्हें पहचान लेता हूं। अगर वो वेश बदल कर आते हैं तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो मेरे पहचान की पकड़ से बाहर नहीं हो पाते, मैं उन्हें जान लेता हूं। और चूंकि ये मेरे अपने हैं, मेरे जाने पहचाने से हैं, तो मुझे कोई खौफ उनसे नहीं होता। ये ठीक उसी तरह से है जैसे कि आप अपने शहर में रहते हैं और सुबह सोकर उठते हैं तो आपको जरा भी भय महसूस नहीं होता है। लेकिन आप बिल्कुल नए शहर में जाइए, शुरू शुरू में याद करने की कोशिश कीजिए, अगर आप किसी नए शहर में गए होंगे तो जैसे ही अंधेरा होने लगता है शाम के बाद, तो आपके मन में एक विचित्र किस्म का भय समाने लगता है। और ठीक इसी तरह से जब आप सुबह सोकर के उठते हैं तो आपको ऐसा लगता है जैसे कि आप एक बिल्कुल अनजानी जगह पर उठे हैं और पता नहीं अब उनके साथ कैसे इंटरेक्शन आप करेंगे, लेकिन अपनी जगह के साथ ऐसा नहीं होता। तो इसलिए जब मैं किताबें पढ़कर सोता हूँ या आपस में बातचीत करके जब सोते हैं, तब जो सपने आते हैं वो बड़े कोमल सपने होते हैं, बड़े प्यारे सपने होते हैं, वो अपने सपने होते हैं, जाने पहचाने सपने होते हैं। अब आप विचार कीजिए कि टीवी चैनल्स का जो मैंने इस्तेमाल किया और फिर पुस्तक का जो मैंने इस्तेमाल किया, उन दोनों का किस तरह का प्रभाव मेरे मस्तिष्क पर पड़ा। मुझे लगता है कि इन सब बातों को हमें ऑब्जर्व करना चाहिए ताकि हम अपने जीवन को बेहतर बना सकें। कम से कम ये सब तो हमारे अपने हाथ में है। हम टीवी चैनल्स को नहीं रोक सकते, जिस तरह से कम्युनिकेशन के फील्ड में क्रांति हो रही है कोई ताकत इसे नहीं रोक सकती। कोई सच पूछे तो अब सरकारी कानून भी इसे नहीं रोक सकता, लेकिन हम तो रोक सकते हैं, हम तो अपने लिए सही तरीके से इसका इस्तेमाल करना सीख सकते हैं। तो दोस्तों, आप सब भी मेरे बात पर विचार करें, साथ ही साथ थोड़ा सा अनुभव जगत में भी घुसने की कोशिश करें। आप मेरी बात को बिल्कुल ज्यों का त्यों स्वीकार मत कीजिए, आप खुद अपना अवलोकन कीजिए और अवलोकन करने के बाद जो आपके हित में हो वही रास्ता आप अख्तियार करें। तो दोस्तों, अब आप सबसे इजाजत चाहूंगा, नमस्कार।